लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे धर्म संघियों और गुरुकुल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए याचना करते हैं, ताकि वे मानवीय, प्रेरितिक, आध्यात्मिक और सामुदायिक विचरण के माध्यम से अपनी बुलाहट में विकसित होकर सुसमाचार के विश्वसनीय गवाह बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कर्मियों ने कहा है कि पूरे गाजा पट्टी क्षेत्र में झुलसा देने वाली गर्मी ने वहां के लोगों को पहले से ही जारी भीषण पीड़ाओं को और बढ़ा दिया है और स्वच्छ पानी की समुचित उपलब्धता एवं कूड़े कचरे से सुरक्षित निपटान के अभाव में बीमारियां फैलने का नया जोखिम उत्पन्न हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि गाजा में बिना फटे बमों को हटाने और उस स्थान को फिर से सुरक्षित बनाने में 14 वर्षों तक का समय लग सकता है। संयुक्त राष्ट्र की विस्फोट सामग्री कार्रवाई सेवा UNMAS के एक वरिष्ठ अधिकारी पायर लैड हैमर ने कहा है कि गाजा में युद्ध ने लगभग 3,70,00,000 टन मलबा उत्पन्न कर दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में इस समय अनफटी विस्फोटक सामग्री की सही तादाद का अंदाजा लगाना असंभव है। जहां घनी आबादी और घनिष्ठ बनी इमारतों को लगभग 7 महीनों की इसराइली भीषण बमबारी में मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
पहर लॉर्ड हैमर ने जिनीवा में पत्रकारों को बताया कि गाजा में चप्पा चप्पा युद्ध से प्रभावित है और आमतौर पर 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 200 किलो मलबा इकट्ठा हो गया है। इस बीच गाजा में मिली सामूहिक कब्रों के बारे में भयभीत कर देने वाला विवरण सामने आ रहा है, जिनमें फिलिस्तीनी लोगों को कथित रूप से निर्वस्त्र किया गया और उनके हाथ बंधे हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि इस विवरण को देखकर इसराइली हमलों में युद्धापराधों को अंजाम दिए जाने के बारे में नई चिंताएं उभरी हैं। उधर युद्ध से तबाह हुए गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की आपूर्ति में समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रही सिगरिड काग ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ये कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वो गाजा में जल्द से जल्द पुनर्बहाली के लिए काम करे, क्योंकि वहां की आबादी पहले ही भारी तबाही और पीड़ा का सामना कर रही है।
रिकवरी इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज ऑल्सो सपोर्ट फॉर द हीलिंग ऑफ द सोल। दिस इज बैगेज दैट पीपल आर आस्क्ड।
सिगरिड काग कह रही थी कि पीड़ाओं से उबरने में केवल ढांचागत या भौतिक पुनर्बहाली ही शामिल नहीं है, रूहों के जख्म भरे जाने भी बहुत अहम है। ये तकलीफों का एक ऐसा बोझ है जिसे लोगों को जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। हमारा ये कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम गाजा के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बिना देरी के काम करें। लोगों के लिए घर बहाल करने होंगे, बच्चों के लिए स्कूल बहाल करने होंगे, ताकि एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित रहने का दंश नहीं झेले। सिगरिड काग के शब्द।
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 में युद्धों के दौरान बलात्कार और अन्य तरह के यौन हिंसा के कुल 3,688 मामलों की पुष्टि की, जो कि वर्ष 2022 की तुलना में 50% वृद्धि है। मंगलवार को सुरक्षा परिषद में यह जानकारी प्रस्तुत की गई। टकरावों की स्थिति में यौन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन ने सुरक्षा परिषद में अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अपराधियों के हाथों में धड़ल्ले से हथियार जा रहे हैं, जबकि मुआवजे और समाधान की बात आती है तो अधिकतर भुक्तभोगियों को खाली हाथ ही रहना पड़ता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
प्रमिला पैटन ने कहा, हमारे सामने एक अनिवार्य और अति व्यवहारिक कार्य ये भी है कि बंदूकों को खामोश किया जाए और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में महिलाओं की आवाजों को बुलंद किया जाए। इस रिपोर्ट में चिंता की सभी 21 परिस्थितियों की घटनाएं, चलन और रुझान शामिल किए गए हैं, जिनमें इसराइल और गाजा, सूडान, यूक्रेन, हेती, म्यांमार और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी शामिल हैं। प्रमिला पैटन ने बताया,
दिस ईयर्स रिपोर्ट मिस्टर प्रेसिडेंट हाइलाइट्स
इस वर्ष की रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बाद पीड़ितों को खामोश कराने के लिए अभूतपूर्व स्तर पर घातक हिंसा के इस्तेमाल पर प्रकाश डाला गया है। 2023 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और म्यांमार में बलात्कार पीड़ितों को उनके हमलावरों द्वारा मारे जाने की रिपोर्टें सामने आई, जो फॉरेंसिक क्षमताओं, जांच और जवाबदेही प्रक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता और पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत प्रदर्शित करती है। ये थे टकरावों की स्थिति में यौन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन के शब्द।
संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने सूडान में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा की लहर का अंत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल कार्यवाही करने की पुकार लगाई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने सूडान में उत्तरी दारफूर प्रांत के अल फशर शहर में हिंसा में आए उछाल पर चिंता व्यक्त की है, जहां पिछले 2 सप्ताह के दौरान सूडान के सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बल RSF के बीच लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
युद्ध के दौरान यौन हिंसा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन और यूएन में आपात राहत मामलों की वरिष्ठ अधिकारी जॉयस मिस्यूआ ने कहा कि सूडान में 2 विरोधी सेनाओं के बीच युद्ध भड़के हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है। इस अवधि में बर्बर कृत्यों को अंजाम दिया गया है, जो 2 दशक पहले दारफूर में भयावह घटनाओं की याद दिलाते हैं। खारतूम, दारफूर और कोर्डोफान में बलात्कार, जबरन विवाह, यौन दासता और महिलाओं व लड़कियों की तस्करी के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। इसके मद्देनजर इन अधिकारियों ने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के तहत सूडान के आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी होगी। उन्हें किन्हीं भी हालात में यौन हिंसा का शिकार नहीं बनाया जाना होगा। ऐसा किया जाना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। 15 अप्रैल 2023 को परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच लड़ाई शुरू हुई और अब तक 80 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। 20 लाख लोगों ने भागकर पड़ोसी देशों में शरण ली है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दारफूर प्रांत के अल फशर शहर में हिंसा में आई तेजी पर चिंता व्यक्त की है, जहां पिछले 2 सप्ताह के दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी जारी की गई है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से पढ़ाई लिखाई और सीखने सिखाने में मदद तो मिली है, मगर सोशल मीडिया से लैंगिक रूढ़ियों व दकियानुसी सोच को भी बढ़ावा मिल रहा है और लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य व कल्याण पर नकारात्मक असर हो रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म शीर्षक वाली ये रिपोर्ट गुरुवार को प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में निहित लाभों के साथ साथ यूजर्स की निजता का हनन होने का भी जोखिम है। साथ ही छात्र छात्राओं का पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटकने और साइबर माध्यमों पर उन्हें डराए धमकाए जाने की आशंका भी बढ़ती है। यूनेस्को के अनुसार सोशल मीडिया पर यूजर्स को एल्गोरिथम के आधार पर मल्टीमीडिया सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इससे लड़कियों के यौन सामग्री से लेकर ऐसे वीडियो के संपर्क में आने का खतरा रहता है जिनमें अनुचित बर्ताव या शारीरिक सुंदरता के अवास्तविक मानकों का महिमा मंडन किया गया हो। इससे लड़कियों के लिए मानसिक तनाव बढ़ सकता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है और अपने शरीर के प्रति उनकी धारणा पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आशीष देना मुझको प्रभुवर, मेरी शरण में आया हूँ। आशीष देना मुझको प्रभुवर, तेरी शरण में आया। मुझको प्रभु वर तेरी शरण में आया परम शांति तो सुख का धाम है पावन सुंदर तेरे काम है परम शांति तो सुख का धाम है पावन सुंदर तेरे काम है भक्तों का तू ही दाता है भटके हुओं का तू आसरा है आशीष देना।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वैटिकन में शुक्रवार को व्यावसायिक प्रशिक्षण और अद्यतीकरण के राष्ट्रीय परिसंघ कॉन्फाप के प्राध्यापकों युवाओं और परिसंघ में सक्रिय सदस्यों ने अपनी 50वीं जयंती के उपलक्ष में संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। इस अवसर पर संत पापा ने परिसंघ के समस्त सदस्यों के प्रति हार्दिक धन्यवाद दिया जो कलीसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा के अनुकूल युवाओं के प्रशिक्षण में संलग्न है। संत पापा ने कहा कि तीन शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और वे हैं युवालो, प्रशिक्षण और व्यवसाय। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हम युवाओं पर विचार करें जो हमारे समय की सबसे नाजुक श्रेणियों में से एक हैं। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि युवा लोग जो हमेशा प्रतिभाओं और संभावनाओं से भरे होते हैं कुछ मानव शास्त्रीय स्थितियों और जिस समय में हम रहते हैं उसके विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं के कारण भी विशेष रूप से असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में कई युवा लोग अपने मूल क्षेत्रों को छोड़कर कहीं और रोजगार की तलाश करते हैं। अक्सर उन्हें अपने सपनों से मेल खाने वाले अवसर नहीं मिल पाते। फिर कुछ लोग काम करने का इरादा रखते हैं लेकिन उन्हें अनिश्चित और कम भुगतान वाले अनुबंधों से समझौता करना पड़ता है। फिर बहुत से युवा शोषण के कारण असंतोष की स्थिति में रहते हैं और अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे देते हैं। अस्तु, हम सभी को एक बात से अवगत होना चाहिए कि शैक्षिक और प्रशिक्षण परित्याग एक त्रासदी है। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा कि वे कॉन्फाप परिसंघ के सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। संत पापा ने कहा कि दूसरा शब्द है प्रशिक्षण, जो भविष्य निर्माण के लिए एक अपरिहार्य प्रतिबद्धता को इंगित करता है। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के कारण भी कार्य परिवर्तन तेजी से जटिल होते जा रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमें दो प्रलोभनों को अस्वीकार करना चाहिए, एक ओर टेक्नोफोबिया यानी प्रौद्योगिकी का डर जो इसे अस्वीकार करने की ओर ले जाता है और दूसरी ओर टेक्नोक्रेसी यानी यह भ्रम कि प्रौद्योगिकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसके बजाय उन्होंने कहा कि हमें संसाधनों और ऊर्जा में निवेश करना चाहिए क्योंकि कार्य के परिवर्तन के लिए निरंतर रचनात्मक और हमेशा अद्यतन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और साथ ही कुछ नौकरियों विशेष रूप से मैनुअल नौकरियों की गरिमा बहाल करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहना चाहिए जिन्हें आज सामाजिक रूप से बहुत कम मान्यता प्राप्त है। संत पापा ने कहा कि तीसरा शब्द है व्यवसाय या पेशा, जो यह परिभाषित करता है कि आप जीविका के लिए क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि हम दूसरों को उनके काम से जानते हैं। यही स्थिति येसु के मामले में भी थी जिन्हें बढ़ई के बेटे या बस बढ़ई के रूप में पहचाना गया था। संत पापा ने कहा कि कार्य हमारे जीवन और हमारे व्यवसाय का एक मूलभूत पहलू है। फिर भी आज हम काम के अर्थ में गिरावट देख रहे हैं जिसकी व्याख्या आम भलाई में किसी की गरिमा और योगदान की अभिव्यक्ति के बजाय कमाई के संबंध में की जा रही है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व्यक्ति के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कामकाजी आयामों में उसके अखंड विकास की सेवा में हो। स्पेन के बार्सिलोना शहर स्थित रामोन लुल कैथोलिक विश्वविद्यालय के ब्लानक्वेर्ना फाउंडेशन के सदस्यों ने वैटिकन में शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। इस अवसर पर संत पापा ने ब्लान क्वेर्ना नाम को याद किया जो कि प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व थे और जिस नाम का उपयोग धन्य रामोन लुल ने अपने समय के समाज का सटीक वर्णन करने के लिए किया था। साथ ही संत पापा ने कहा दार्शनिक और शैक्षणिक रूप में यह नाम ईसाई जीवन के कुछ आदर्श देने का प्रयास करता है जो किसी भी व्यक्ति को मसीह का अनुसरण करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह सब आश्चर्यजनक प्रासंगिकता का एक सबक है क्योंकि यह हमें एक नई और सुलभ भाषा के बारे में बताता है, संचार के उस तरीके के बारे में जो शायद उस समय के लिए असामान्य हो लेकिन अपने समकालीनों के लिए सुखद और स्पष्ट है। संत पापा ने कहा कि रामोन लुल हमें जीवन का सरल और प्राकृतिक आदर्श प्रदान करते हैं जिसमें हम ईश नियमों का पालन कर सुखमय जीवन यापन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज दुर्भाग्यवश हम पर थोपे गए बाजार व्यवस्था की अप्राप्य रूढ़ियों के कारण विश्व में कितना दर्द और कितनी हताशा है जिनमें से ईश योजना की खोज करना एक महान कार्य है। उन्होंने कहा कि आपके फाउंडेशन तथा संपूर्ण रामोन लुल विश्वविद्यालय ने इस नाम को ग्रहण कर इस दायित्व को स्वीकार किया है कि वह हर संभव प्रयास करेगा ताकि परिवार समाज में अपने मूलभूत इकाई वाली भूमिका को भली प्रकार समझ सके। इसके अतिरिक्त रामोन लुल फाउंडेशन युवाओं को जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाने के लिए मार्गदर्शन देकर उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद प्रदान कर रहा है जो कि वास्तव में सराहनीय है। रोम में विश्व बाल दिवस की पूर्व संध्या इटली के सार्वजनिक रेल परिवहन ट्रेनी तालिया पत्रिका ला फ्रेचिया को दिए एक साक्षात्कार में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक परिवहन में यात्रा कर लोगों के बीच रहना अत्यधिक पसंद था जिसे इस समय वे सबसे अधिक याद करते हैं। वैटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक प्रासाद में पत्रकार रोबर्टो पचिलो के साथ बातचीत में संत पापा ने बच्चों को महत्वपूर्ण बताया क्योंकि सबसे छोटे बच्चों में सुंदरता की भावना बरकरार रहा करती है। उन्होंने कहा कि यदि हम बच्चों की सुनेंगे तो बच्चे स्वयं हम वयस्कों में जागरूकता को बढ़ाएंगे। पत्रकार पचिनो ने 6 नवंबर 2023 के दिन का स्मरण दिलाया जब वैटिकन के रेलवे स्टेशन पर संत पापा फ्रांसिस ने रॉक ट्रेन नामक रेलगाड़ी पर सवार लगभग 7,500 बच्चों को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। इस संदर्भ में किए प्रश्न का उत्तर देते हुए संत पापा ने कहा कि वह वैसा ही अनुभव था जैसा कि कोई नाना घर लौटने वाले नाती पोतियों का स्वागत करता है। संत पापा ने कहा शिक्षित करने का अर्थ है नन्हे बच्चों का तब तक साथ देना जब तक उन्हें यह महसूस न हो कि वे इसे स्वयं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा जीवन का एक रूपक है और रिश्तों के इस दैनिक सिलसिले में हमारा दायित्व यह जानना है कि दूसरों को स्वयं बने रहने देते हुए हम किस तरह उनके करीब जा सकते हैं। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निर्देशक मत्तेओ ब्रूनी ने सम्राट अब्दुल्ला द्वितीय और उनके साथ आए शिष्टमंडल पर पत्रकारों को बताया कि संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार सुबह वैटिकन के प्रेरितिक प्रासाद में किंग अब्दुल्ला द्वितीय और उनके शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 20 मिनट तक चली निजी मुलाकात में बहुत सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। मत्तेओ ब्रूनी ने यह भी बताया कि गुरुवार सुबह जॉर्डन के सम्राट और जॉर्डन के प्रतिनिधिमंडल का अभिवादन करने के उपरांत दोनों नेताओं के बीच उपहारों का पारंपरिक आदान प्रदान हुआ। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।